बहुत बहुत प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज 19 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मित्रों, विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है राहुल सुकारु जूरी, जो गढ़ चिरौली महाराष्ट्र से हैं। तो राहुल, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं। वो सूचनाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि सैटरडे संडे को चूंकि हॉलीडे होता है, इसलिए डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि मिलती रही हैं। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, सैटरडे को ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी प्रोवाइड की जाती हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है। उनमें आपको नौ योजना और कुरुक्षेत्र, हिंदी इंग्लिश की योजना और हिंदी इंग्लिश के कुरुक्षेत्र, इन दोनों के एक एक आर्टिकल, यानी कि टोटल चार आर्टिकल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो आर्टिकल होते हैं आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं। ये बात अलग है कि उसमें आपको कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी मिलेंगे कि हिंदी का ही अंग्रेजी रूप, अंग्रेजी फॉर्मेट में होगा। तो इस हो सकता है कि टॉपिक के लिहाज से आपको योजना का एक ही आर्टिकल मिले और कुरुक्षेत्र का एक ही आर्टिकल मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए, प्लीज उन्हें अवॉइड आप न करें। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, साप्ताहिक प्रश्न जिसे हम कहते हैं, जो मेंस के पैटर्न पर होता है। और मैं हर बार इस तथ्य पर जोर देता हूं, काफी जोर देता हूं, और इस बार भी जोर देना चाहूंगा कि प्लीज आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को अवॉइड न करें। मित्रों, मैं जानता हूं कि प्रश्नों के उत्तर लिखने बड़े कष्टप्रद होते हैं, बड़े दुखदायी होते हैं, अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि दिमाग का एक तरीके से यूं कह लीजिए कि फलूदा बना देता है जब हम प्रश्न लिखने बैठते हैं। यही तो चैलेंज है। देखिए, इसी यातना को तो हमें बर्दाश्त करके उस यातना को आनंद में बदलना है, क्योंकि परीक्षा में तो हमें लिखना पड़ेगा, वहां तो हमें अवॉइड नहीं कर सकते। और मुश्किल बात यह है, मजेदार बात यह है और चैलेंज यह है कि 3 घंटे में 20-20 प्रश्न लिखने पड़ेंगे। मैं तो यहां आपको सप्ताह में सिर्फ एक प्रश्न देने लिखने की बात कह रहा हूं। तो मित्रों, प्लीज डू दैट, डोंट अवॉइड। और इसके बाद फिर जो हमारे 5th-6th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों, अब इन सूचनाओं के बाद आइए मैं अब कुछ न्यूज एनालिसिस के पॉइंट पर आता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी अनिल माधव दवे जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मित्रों, अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा आज की अनिल माधव दवे जी, जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, वो नहीं रहे और उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 61 साल के ही वे थे। मेरा यह सौभाग्य था कि मैंने उन्हें आमने सामने सुना है। कुछ ही दिनों पहले भारत भवन में मैंने और मेरी पत्नी ने उनका व्याख्यान सुना था, बड़ा ही खूबसूरत व्याख्यान, देखने में बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सज्जन। और सच पूछिए तो जब आप सुनते हैं तो विद्वत्ता उसमें उनमें झलकती हुई दिखाई देती है। मतलब अनिल माधव दवे जी ऐसे लोगों में थे कि जिन्हें देखने सुनने के बाद, सच पूछे तो राजनेताओं के प्रति आम लोगों की जो एक सामान्य सी एक नकारात्मक धारणा बन गई है वो बिल्कुल सकारात्मक हो जाती है। और हमें लगता है कि नहीं, हमारे जो राजनेता हैं, जिस तरीके से हम उनके बारे में बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, वैसा नहीं है, सब वैसे नहीं है। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं और वाकई में अनिल माधव दवे जी ऐसे ही लोगों में थे। कितने ज्यादा वो पर्यावरण प्रेमी थे, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने निवास का नाम रखा था नदी का घर। देखिए, नदी का उद्गम नहीं रखा उन्होंने, नदी का घर, ये उन्होंने नाम रखा था अपने निवास स्थान का। नर्मदा नदी के संरक्षण के वो एक तरह से बहुत ही बड़े अगुवा थे। उन्होंने विमान से नर्मदा नदी की पूरी परिक्रमा की थी, फिर राफ्टिंग के जरिए की। मतलब पर्यावरण प्रेमी वो किस स्तर के थे, वो जब वो पर्यावरण पर बोलते थे तब सुनकर के ही अंदाजा लग जाता था कि ये कितने मन से अपनी बात कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का चला जाना किसी एक परिवार की क्षति नहीं होती है, किसी एक छोटे समुदाय की क्षति नहीं होती है, बल्कि सच पूछिए तो हमारे पूरे के पूरे राष्ट्र और कहीं ना कहीं दुनिया की भी एक क्षति होती है। क्योंकि जो पर्यावरण का जो मुद्दा है वो केवल भारत का मुद्दा नहीं है, अब वो पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है और यहां तक कि आगे आने वाली दुनिया का भी मुद्दा वो आज है। तो डेफिनेटली मित्रों, ये बहुत ही दुख भरी खबर है, लेकिन ईश्वर प्रकृति का अपना खेल है, उनका अपना उसका अपना विधान है। तो मित्रों, यह एक दुखद खबर है जो मैंने अपने मन की पीड़ा को आप लोगों के साथ शेयर किया है। मित्रों, अब मैं दूसरी खबरों पर आता हूं। जो सबसे बड़ी खबर कल के न्यूज में थी वो थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर। मुझे ध्यान है कि जब भारत कुलभूषण जाधव जी के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर के गया था, तब मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर बात करेंगे, तो अभी एक मौका है। मुझे मालूम था कि जिस दिन वो डिसीजन देंगे उस दिन हमें फिर से मौका मिलेगा, तो आज हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में कुछ बातें करेंगे और साथ ही साथ हम वियना संधि के बारे में भी बातें करेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो हवाला दिया है जिसके तहत उसने भारत की आपत्ति को, भारत की मांग को बहुत जायज ठहराते हुए पाकिस्तान से कहा है कि जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाए तब तक वो कुलभूषण जाधव जी को फांसी न दे। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वह इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। हालांकि उसने डिसीजन के बाद ही कह दिया है कि वह इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आइए मित्र, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं वियना कन्वेंशन के ऊपर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है फ्रेंड्स, ICJ कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। कभी कभी आपको अखबारों में विश्व न्यायालय भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही अस्तित्व में आया था, क्योंकि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार से इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उनको लगने लगा था कि अगर ये थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो फिर दुनिया का क्या होगा। तो उन्होंने UNO बनाया। हालांकि इसकी जो न्यू थी वो पहले ही लीग ऑफ नेशन के रूप में पड़ चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में। खैर, 1945 में UNO आया, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के संदर्भ में जानना ही चाहिए। और उसी के साथ ही, उसी के चार्टर के आधार पर तुरंत ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आया। यानी कि इसके भी जो स्थापना वर्ष है वो 1945 ही है। ये बात अलग है कि काम शुरू करने में उसे एक साल का वक्त आगे लग गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, जो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी हेग है, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। मैं ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स की, ताकि वो बातें आपके दिमाग में रहें और प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इतने सरल क्वेश्चन सिविल सर्विस में तो नहीं आएंगे, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस के और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से उनमें चूंकि पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जानबूझकर मैं उधर आपका ध्यान दिला रहा हूं। दोस्तों, ये UNO की जो 5-6 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये 15 लोगों का न्यायालय होता है, उसमें 15 जस्टिस होते हैं। और आप देखिए कि जो जस्टिस का जो टर्म भी होता है वो 9 ईयर्स का होता है। एक बार अगर आप उसमें जस्टिस बन जाते हैं तो 9 ईयर्स के लिए आप होते हैं। और भारत के अभी एक न्यायमूर्ति वहां जस्टिस हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए, उनका नाम है दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी वहां भारत के जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायमूर्ति के रूप में मौजूद हैं। मित्रों, वो जो हेड होते हैं जो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं कहते, है ना, उन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। न्यूज में आपने सुना भी होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष ने कहा। राइट ये जो जजेज चुने जाते हैं फ्रेंड्स, जो यूएनओ का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 193 देश इसके सिग्नेचरी हैं, 193 कंट्रीज इसके अभी मेंबर हैं। जनरली जो यूएनओ के मेंबर होते हैं वो इन ब्रांचेस के भी मेंबर होते ही हैं। तो फ्रेंड्स जो मेंबर होते हैं उनसे पंचायत बनती, जिसे आप हमारी संसद कह सकते हैं, इस ये कहलाती है जनरल असेंबली, यूएनओ की जनरल असेंबली महासभा। इसमें सारे सदस्य होते हैं, हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। जैसे ग्राम सभा होती है पंचायतों की, ठीक इसी तरह से राज्यों की विधानसभा होती है, ठीक इसी तरह से राष्ट्र की संसद होती है। तो आप यूएनओ को संसद मान सकते हैं, राइट। हमारे यूएनओ में एक जो मामला है फ्रेंड्स वो है कि जनरल असेंबली तो है लेकिन उसके साथ ही साथ में एक सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई है, सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए सिक्योरिटी काउंसिल भी होती तो कोई बात नहीं है, जैसे कैबिनेट होती है तो संसद में से कुछ लोगों को लेकर के महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया, कैबिनेट डिसीजन लेती है, कोई बात नहीं। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांच परमानेंट मेंबर हैं, एक तो वो पांच परमानेंट मेंबर यानी जो आपको मालूम है अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये उसके पांच परमानेंट मेंबर हैं। 10 और मेंबर चुने जाते हैं दो दो साल के लिए। लेकिन ये जो पांच मेंबर है इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इन पांच मेंबर में से कोई भी मेंबर किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, कोई भी मेंबर एक भी अस्वीकार कर देता है, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है। यानी कि आप समझिए कि 192 मेंबर्स एक तरफ हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के भी चार मेंबर हैं, और केवल एक मेंबर कह रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो ये कैसी तो डेमोक्रेसी है, मतलब यूएनओ की आप सोचना होगा, और कैसे ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, कैसे ये विश्व व्यवस्था को सही तरीके से संचालित कर सकती है, ये सवाल हमेशा उठाया जाता है, राइट। अब होगा क्या दोस्तों कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो डिसीजन दिया है, अगर पाकिस्तान उसे नहीं मानता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकती, ज्यादा ज्यादा होगा यह मामला भारत बट नेचुरल है कि यूएनओ में लेकर के जाएगा। अगर इसको जनरल असेंबली पारित भी कर देती है तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान तो नहीं है, पांच जो मेंबर है उसमें पाकिस्तान तो नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन में अभी कितनी अच्छी रिलेशनशिप है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चीन क्या करता है, गॉड नोज, भगवान जाने क्या करता है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये इसकी पूरी की पूरी बनावट है। तो आप देखिए कि कैसे उस सिक्योरिटी काउंसिल के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक तरीके से असहाय है, राष्ट्र मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं थोड़ी सी वियना कन्वेंशन के ऊपर। देखिए वियना संधि, वियना कन्वेंशन, इसको लेकर के बड़े कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए कि वियना एक ऐसा विचित्र सा शब्द है कि वियना ट्रीटी पता नहीं कितनी बार हुई है, कितनी बार वियना ट्रीटी हुई है इतिहास में। अगर आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप सन के हिसाब से उसको याद करते हैं कि अच्छा वियना ट्रीटी, अच्छा ये 1805 है, अच्छा ये 1864 है, अच्छा ये 1861 है, अच्छा ये 1815 है, इस तरह से आप याद करेंगे। इंग्लिश में जो इसका नाम है फ्रेंड्स वो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजनयिक होते हैं, उन राजनयिकों के संबंधों पर आधारित ये कन्वेंशन है जो विश्व स्तर पर है, जिस पर दुनिया के 191 कंट्रीज ने साइन किए हैं, और 1861 को ये अस्तित्व में आया था, 1961, मतलब काफी लंबे समय, लंबा मतलब करीब के 75 साल हो चुका है, 1961 में ये अस्तित्व में आया था। अब आप देखिए कि फ्रेंड्स कि इसमें बेसिकली क्या है, मतलब क्या इसमें बातें कही गई हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। इसके केंद्र में क्या है, केंद्र में कुल मिलाकर के ये है कि जैसे भारत का हमारे जो राजदूत है वो अमेरिका में है, वो हमारे एम्बेसडर है, एम्बेसडर होने के नाते वो भारत के प्रतिनिधि हैं, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, अमेरिका में वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। और ठीक इसी तरह से अमेरिका का भी के भी जो एम्बेसडर भारत में है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द अमेरिका है यहां, जब तक वो है यहां, ठीक है वहां के राष्ट्रपति आएंगे तो बट नेचुरल कि उनका वो दाव ऊपर होगा। तो ये जो हमारी जो डिप्लोमे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे जो हाई कमिश्नरीज हैं वो बहुत निडर होकर के निर्भयता के साथ काम कर सकें, इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और इस तरह से काम कर सकें जैसे कि कोई संप्रभु राष्ट्र करता है, तो उसके लिए ये संधि की गई है और उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, डिप्लोमेट्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं। बस कुछ मिलाकर के कन्वेंशन का ये मूल आधार है, ये बेस है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की पुलिस भारत की एम्बेसी में कुछ चीजें खंगालने के लिए आना चाहती है, उनको कोई भी डाउट है, तो ऐसे नहीं घुस सकती है, उन्हें इसके लिए बकायदे हमारे जो एम्बेसडर होंगे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर एम्बेसडर परमिशन नहीं लेंगे तो वो नहीं घुस सकते। वो कोई दस्तावेज, किसी भी तरह के दस्तावेज की छानबीन नहीं कर सकते। जैसे डिप्लोमेटिक बैग्स होते हैं, है ना, जिसमें कि चीजें, खबरें भेजी जाती हैं, लिखित दस्तावेज भेजे जाते हैं, चिट्ठी पत्री होती है, अमेरिका उन्हें खोलकर नहीं देख सकता, उनकी सैंक्टिटी होती है, उनकी सुरक्षा बकायदे इंश्योर होती है। ठीक इसी तरह से जो हमारे वहां हाई कमीशन्स हैं, हमारी जो एम्बेसीज हैं, वो उनकी जो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित रहें, उस देश के सरकार पर होती है। इस तरह के कुछ इम्यूनिटी भी दी गई है, टैक्सेस के बारे में उनको काफी छूट दी जाती है, यहां तक कि हमारे जो एम्बेसडर और वहां काम करने वाले लोग हैं उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उन फैमिली मेंबर्स भी वहां के बहुत से कानून से इम्यून होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आप आम नागरिकों की तरह ही हैंडल करेंगे जैसे कि अमेरिकन नागरिकों को आप कर रहे हैं, और ये दुनिया के सभी देशों के साथ है। तो मित्रों, ये है वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जिसका बेस मैंने आपको बताया है। इस कन्वेंशन में टोटल 53 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, जिसमें अलग 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 पॉइंट्स दिए हुए हैं और बहुत ही क्लियरली सारी चीजें लेट डाउन की हुई है, बहुत ही क्लियरली तरीके से, ताकि जो हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो वहां इम्यून पावर को, उनके कुछ प्रिविलेज इंश्योर हो सके, उनके कुछ जो विशेषाधिकार हैं वो उनको प्रदान किए जा सके, क्योंकि अगर वो विशेषाधिकार आप नहीं देंगे तो वो तो फिर काम कर ही नहीं सकेंगे और फिर राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान भी फिर कैसे होगा। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसके बारे में था। इसके बाद दो और छोटी छोटी खबरें थी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की जो बैठक हुई है, आपको मालूम है आपके यहां श्रीनगर में हुई है और आज फिर से बैठक हो रही है। कुछ वस्तुओं के बारे में फिक्स कर दिया गया है कि जीएसटी कितना लगेगा, कुछ के बारे में आज और फिक्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। आपको मालूम है कि सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। दोस्तों, एक खबर और भी है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपने देखा कि किस किस तरीके से बड़े जबरदस्त तर्क आए जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वो चीजें सामने आई हैं। और एक चीज पक्का हो गया है कि जो 3 तलाक है वो धर्म का हिस्सा नहीं है, इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पाप है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही सवाल किया कि जो धर्म का हिस्सा नहीं है, जिसे पाप माना जा रहा है, उस पर आस्था कैसे हो सकती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है अपने पास अभी सुरक्षित रखा है, देखिए वो अब कब डिसीजन देता है, लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन होगा, मतलब गेम चेंजर एक तरीके से यह होगा। मित्रों, जहां तक अब न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं कुछ पेज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसे आप सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। और अब मैं सीधे आता हूं आज के ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं, ब्रजेश कुमार, आप पूर्णिया बिहार से हैं, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, सेजल राय, अंकुर निगम, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, आर्यन भारद्वाज और नसरीन तांबोली, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। 2 दिनों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। मित्रों, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।